الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبق پڑھنا چاہیے نا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں جو سچ ہے وہ دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے یعنی برا ہے وہ بھی بتا کہ وہ مطلب so that we can recognize what is باطل، اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے، تو ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم کہاں تک پہنچے تھے یہ بتائیں، یا واقعہ کا نام بتا سکتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تک بتا سکتے ہیں کہ کس ایج تک پہنچے تھے. کوئی بتائے گا کسی بھی کلاس میں سے؟ اچھا، اور کوئی بتائے گا؟ انہوں نے بتایا 40 ایئرس، 35 تک تو نہیں، 35 سے تو آگے بڑھ گئے تھے. 40 کیا بالکل صحیح ہے؟ 40 ایکوریٹ ایگزیکٹ؟ 42. ہم پہنچے تھے 40 کا بالکل لاسٹ منٹ میں ذکر تو کیا تھا، لیکن 28 تو خیر نہیں، چلیں یہ لکھیں، اب تکے نہیں ماریں گے. اچھا، انہوں نے لکھا صحیح ہے، 39 years 6 months. ماشاء اللہ، زبردست، انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا، 39 years and 6 months، یعنی 39.5 years. ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو کمر کے حساب سے جو ہوتا ہے نا، چاند کے حساب سے ہوتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں پہ تو کم سے کم صرف کمری حساب سے ہی ہوتا تھا. تو وہ کیوں اس طریقے سے 39.5 years کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے جو آخری بات کری تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عمر کو پہنچے تھے نا، 6 مہینے رہ گئے تھے 40 ایئرز ہونے میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، تنہائی پسند ہو گئی، کہ بھائی اچھا لگتا تھا اکیلے بیٹھے رہنا، سوچتے رہنا، اور ہفتوں کبھی کبھی مہینے تک بھی غار میں بیٹھے رہتے تھے. بس کھانا جو ہے وہ آ جاتا تھا، یا تو خود جا کے کھانا لے آتے تھے گھر سے، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کسی سرونٹ کے ہاتھ جو ہے نا وہ کھانا بھیج دیتی تھی، وہ سرونٹ کھانا دے کر کے واپس آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ سن وہیں پہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ وہاں سے نظر آتا تھا کعبۃ اللہ غار حرا سے، اور سوچتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کیا مقصد ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے وغیرہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اچھا، اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے نیند تو آتی تھی، تو جب سوتے تھے نا تو پھر خواب نظر آتے تھے، اور خواب ایسے دکھائی دیتے تھے کہ جب اٹھتے تھے تو پھر وہ خواب بالکل جیسے کہ لائک ڈے لائٹ میں، بالکل یعنی وہ واقعہ ہو جاتا تھا یہ جو انہوں نے خواب میں آپ سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ رؤیا صالحہ کہلاتے ہیں. رؤیا کہتے ہیں خواب کو، اور صالحہ مینس ٹرو، ٹھیک ہے، یا سچے یا اچھے. رائٹ، اچھا، یہ سلسلہ کتنے عرصے رہا؟ 6 مہینے تک رہا یہ سلسلہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا صحیح کر دیں ان کو لکھ کر. تو یہ 6 مہینے یہ سلسلہ رہا، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال کی 40 ایئرز کی ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غار حرا میں موجود تھے کہ ایک دم سے ایک آدمی آ گئے. ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر انسان کی شکل میں تھے، لیکن وہ انسان تھے نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ کون تھے. تو وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر کے نا نبی علیہ السلام، اچھا، ان کے پاس جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سلک کلاتھ، ریشمی قسم کا کپڑا تھا، اور اس کپڑے کے اندر انہوں نے ایک بک یا پیپرز وغیرہ کچھ رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ایک پیپر ہوگا یا باقاعدہ بک ہوگی، جو بھی ہے، لیکن کوئی چیز تھی ریٹن فارم کے اندر تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے پھر اس کو کھولا، یعنی اس جیسے ہم قرآن شریف بھی ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ غلاف کے اندر بھی کچھ لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، ریشمی غلاف ہوتا ہے اچھا سا. تو انہوں نے اس کو کھولا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ اقرا، اقرا، پڑھیے. ٹھیک ہے، ریڈ، صحیح ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام did not know how to read، پڑھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، जो लिखी हुई इबारत होती थी ना, लिखी हुई टेक्स्ट जिसको कहते हैं, उसको पढ़ना कि भाई ये अलिफ लिखा हुआ है, बा लिखा हुआ है, इन दोनों को मिला करके अब क्या साउंड बनता है, ठीक है ना। आप ससरम ने कभी ये सीखा ही नहीं था, ठीक है, और कभी किसी को फिक्र भी नहीं हुई आप ससरम को सिखाने की। पूरे मक्का मुकरमा में उस जमाने में अराउंड 6 लोग होते थे जिनको के राइटिंग को पढ़ना आता था, 6 लोग। उनमें से एक बड़े मशहूर कौन, किसी को नाम याद है किसी एक का? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो उनमें से एक थे जिनको पढ़ना आता था और किसी को पढ़ना नहीं आता था। अच्छा, इनको पढ़ने का इतना वो क्यों था, कोई फिक्र क्यों नहीं थी? हमारे यहाँ तो भाई जब तक रीडिंग ना हो तो उस वक्त तक तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। उस जमाने में क्यों नहीं थी? इसलिए कि उस जमाने में खास तौर पर ना वो लोग ओरल ट्रेडिशन पे ही सारा डिपेंड करते थे, जुबानी बात होती थी, और उनको अल्लाह ताला ने जो जो मेमोरीज दी थी ना, याददाश्तें, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग याददाश्तें नहीं थी। दे हैड लाइक समथिंग क्लोज टू फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप जो चीज देखते हैं ना, तो जिस तरह कैमरे से एक फोटोग्राफ ले लेते हैं ना कैमरा, वो प्रिजर्व हो जाती है, तो उसी तरीके से वो किसी चीज को देखते थे, उनको याद हो जाती थी, ठीक है। वो कोई चीज सुनते थे, अच्छा फोटोग्राफिक मेमोरी एग्जैक्टली उस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनका ये मामला था कि वो सुनते थे चीजों को और उनको याद हो जाती थी, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में उनको याद हो जाती थी, ठीक है। तो अब ना उन लोगों को जो है वो बहुत लंबी लंबी पोएम्स, पोइट्रीज याद थी अरबिक लैंग्वेज के अंदर, लंबी लंबी पोइट्रीज, ठीक है। उनको जो है वो पोइट्रीज के अलावा उनको अपने जो है ना वो जो उनकी एंसेस्टर ट्री बनती है कि इनके बाप का नाम, फिर बाप के बाप का नाम, फिर बाप के बाप का नाम, बाप के बाप का नाम, उनको ये एंसेस्टोरियल ट्रीज जो है ये पूरे पूरे लोगों को याद होते थे। खाली अपना नहीं, अपना तो बहुत सारे लोगों को याद हो सकता है, दूसरों को भी याद होता था कि उसके बाप का ये नाम था, उसके दादा का नाम था, उसके परदादा का नाम था, उसके पर दादा का नाम था, ऑल द वे जितना भी मौजूद था। अच्छा, इससे भी ज्यादा फनी चीज क्या, फनी तो खैर नहीं लगता, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या कि इन लोगों को अपने घोड़ों के भी एंसेस्टोरियल ट्रीज याद होते थे कि इस घोड़े का नाम ये है, जो इन्होंने रखे होते थे घोड़ों के नाम, ठीक है, इस घोड़े के बाप का नाम ये था, उसके दादा का नाम ये था, उसके परदादा का नाम ये, घोड़ों के भी उनको याद होते थे, ठीक है। तो इमेजिन करें ना कि इन लोगों के यहाँ यानी याद रखने की बात कितनी इंपॉर्टेंट थी कि इनको जरूरत ही महसूस नहीं होती थी कि भाई लिखी हुई चीज, अच्छा लिखी हुई चीज की जरूरत क्यों नहीं महसूस होती थी, क्यों भाई? क्योंकि जो लिखी हुई चीज होती है ना, लिखने का एक मकसद होता है, राइटिंग का एक पर्पज होता है। वो क्या होता है कि जब आप किसी चीज को भूल जाए ना, तो वो राइटिंग के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है। जब आप किसी चीज को भूल जाएंगे तो फिर आपको बुक देखने की जरूरत पड़ेगी ना। अभी आप मुझसे बातें सुन रहे हैं ना, ठीक है, अच्छा अगर आपको तो फर्स्ट टाइम सुन करके सारी चीजें याद हो जाए तो फिर यू वॉन्ट नीड अ बुक, है ना। आपको घर जाकर के रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बुक देखूं रिवाइज करूं, अच्छा ये बातें बताई थी, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी भी ऐसी मेमोरी हो जाए, या माशाल्लाह होगी आप में से, आई एम श्योर के होगी, ठीक है, तो आप बैठे हुए थे माशाल्लाह, अन्ना साहब बैठे हुए थे, उनको हमने 3-4 बातें बताई और फिर हमने थोड़ी देर में उनसे पूछा कि क्या बताई, उन्होंने सारी चीजें एग्जैक्टली वैसी बता दी जैसी उनको बताई। माशाल्लाह हमारे दरमियान भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि इनको याद हो जाती हैं चीजें फौरन फौरन, ठीक है। तो रिटन की तो जरूरत ही उस वक्त पड़ती है जब आपको याद ना हो चीजें, तब आपको लिखने की जरूरत पड़ती है ना। तो उन लोगों में तो ऐसी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी याद रखने की कि उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, इस वजह से दे डिड नॉट बॉदर कि किसी को पढ़ना आता हो ना आता हो, उनके उनके यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जस्ट लाइक ऑल द अदर पीपल इन मक्का मुकर्रमा, ही नेवर लर्नड हाउ टू रीड, ठीक है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब उन्होंने ये राइटिंग दी ना कि इकरा, पढ़िए इसके अंदर से, ठीक है, ये नहीं बताया कि क्या पढ़िए, बस पढ़िए, तो आपने फरमाया मा अना बिकारी, ठीक है, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता, मैं कारी हूं ही नहीं जिसको के तिलावत करनी आती हो, रीड करना आता हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और आदमी की फॉर्म में आए थे उस वक्त, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ना पकड़ा ऐसे करके, ठीक है, जैसे किसी को दबोचते हैं ना यूं करके, हाइट भी डेफिनेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जैसी हाइट होगी, जब भी पकड़ा तो उनका सीना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से गोया के चपक गया, ठीक है। आप किसी को ना ऐसे है? अगर होता तो पकड़ के बताते, खैर इन्होंने ना ऐसे पकड़ा और पकड़ के ना यूं करके स्क्वीज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, जैसे फेस टू फेस, चेस्ट टू चेस्ट, ठीक है, और फिर इस तरह पकड़ करके स्क्वीज किया, बहुत जोर से स्क्वीज किया, और आप ने बाद में जो बताया साहबा को अपने कि फरमाया कि मुझे इतना जोर से उन्होंने स्क्वीज किया कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जो पसली है ना अंदर जो जो बोन्स होती हैं चेस्ट के अंदर, रिब्स जो होती हैं, वो रिब्स लगता था कि वो क्रैक हो जाएंगी, इतना टाइटली उन्होंने मुझे स्क्वीज किया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, एकदम से रिलीज कर दिया नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है, फिर उसके बाद फरमाया इकरा, पढ़िए इसको। ठीक है, आप सजन ने फिर जवाब दिया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक दफा फिर ऐसे ही पकड़ करके आप सल्लम को भेजा, यानी स्क्वीज किया टाइटली, और फिर आप सल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरी रिब्स टूट जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे रिलीज कर दिया, ये दूसरी दफा था। ठीक है, फिर कहा इकरा, तो आप सल्लम जवाब दिया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, फिर तीसरी दफा पकड़ करके ऐसे करके टाइट करके दबाया, और फिर उसके बाद जो रिलीज किया ना और फरमाया इकरा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ना कैसे शुरू किया, अब ये जी इसके बाद ना नबी अलैहिस्सलाम ने जो पढ़ना शुरू किया ना, तो इसके बारे में डिटेल नहीं है कि क्या अब लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया, ठीक है, या ये कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद ही एक्चुअली आगे पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ऐसे ही हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद ही फिर आगे पढ़ना शुरू कर दिया, और वो आप सबको पता है, आपको तो बहुत ज्यादा पता है माशाल्लाह, वो पास बैठे हुए थे सारे। ठीक है, क्या पढ़ा, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक्रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ठीक है, ये पांच आयतें बनती हैं सूरह अलक की, इसमें पारे के अंदर जो है यारमुकल्ला, तो इसकी ये पांच आयतें जो है ना वो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और नबी अलैहिस्सलाम ने सुन ली। ठीक है, और सुन करके ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये याद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद इनको नहीं भूले। ठीक है, तो ये वाकया जब हुआ तो इसके बाद ना फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो वापस चले गए और नबी अलैहिस्सलाम हैरान परेशान, क्या हो गया ये सब कुछ, है ना, कौन थे ये, इन्होंने क्यों किया मेरे साथ सारा कुछ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जो है ना वो डर गए, सहम गए इस वाले वाक्य से। ठीक है, अब ये एक नेचुरल डर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नेचुरल डर होता है जो कि इंसान में अल्लाह ताला ने डाला होता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जी अल्लाह के नबी थे फिर भी डर गए, या इतने अच्छे इंसान थे फिर भी डर गए, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये डर जो है ना ये इसको कहते हैं नेचुरल तबीई, उर्दू में तबी कहते हैं और इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखा है, दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, अगर आपके अंदर ये ना हो ना तो उसको कहेंगे कि यू हैव समथिंग रॉन्ग विद यू। ठीक है ना, कि आपके अंदर ये नेचुरल डर ही नहीं है, इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, आप प्रॉपर ह्यूमन नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है, कुछ मसला है आपके साथ। तो नबी अलैहि सलाम में भी ये डर था, मूसा अलैहि सलाम का वाकया भी आपने कुरान शरीफ में पढ़ा होगा कि सूरह ताहा के अंदर या बाद में और जगहों पे भी जिक्र है कि जब वो अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहि सलाम से कि अपने अल्की बिअसाक, अपने असा को जमीन पर डाल दो, तो फिर वो सांप बन गया। ठीक है, तो जब वो सांप बन गया तो मूसा अलैहि सलाम इतने डरे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा अलैहि सलाम पलटे और भागना शुरू हो गए, क्योंकि वो सांप भी कोई छोटा मोटा सांप नहीं बना था, वो पाइथन बना था, अजदहा जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा सांप। ठीक है, मूसा अलैहि सलाम भागने शुरू हो गए तो अल्लाह ताला ने की आवाज आई कि मूसा मत डरो वापस आ जाओ, वापस आ गए, फिर उसके बाद बात मानी उन्होंने, कोई हाथ रखो, हाथ रखा, वो फिर से ऐसा बन गया। ठीक है, खुश है, तो आप सल्लम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए, और खौफ का जो शिकार हुए ना तो फिर कहाँ गए, ये बड़ी ये आप सल्लम अपने घर गए। ठीक है, आप सल्लम अपने घर गए। अच्छा, अगरचे के है तो बच्चों की क्लास, लेकिन कुछ जो है वो जरा बड़े बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं फिर भी ये बात करूंगा कि देखिए नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ गए, अपने घर गए। ठीक है, हालांकि आप ससुरों के पास और चॉइसेस भी थी, सबसे बड़ी चॉइस कौन सी थी आप ससुरों के पास जी, काबतुल्ला, अल्लाह के घर चले जाते, वहां पे जाकर के बातें करते। ठीक है, या आप ससुरम जो है वो और कहाँ जा सकते थे, सीरत की क्लास है तो पता होनी चाहिए, अपने फ्रेंड अबू बकर सिद्दीक के पास, जिनके साथ आप सल्लम की दोस्ती जो थी वो 20 ईयर्स पहले से शुरू हो चुकी थी। जब आप 20 ईयर्स के थे ना, तो अबू बकर सिद्दीक रहता उस वक्त 18 साल के थे, उस वक्त इन दोनों की दोस्ती बनी थी, दोस्ती शुरू हुई थी, तो 20 साल गुजर चुके थे, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, और किसके पास जा सकते थे? अबू तालिब, एग्जैक्टली, ठीक है, आप के इतने मोहब्बत करने वाले शफीक चचा थे, तो वो भी तो जिंदा थे ना उस वक्त, तो अबू तालिब के पास जा सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो किसी जगह पर नहीं गए, बल्कि आप जो है ना वो अपने घर गए, किसके पास? अपनी वाइफ के पास, अपनी बीवी के पास, ठीक है। तो ये चीज ना अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप में से शायद कोई भी शादीशुदा नहीं है सवाए अंकल्स के या आंटीज के, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह आप लोग बड़े होंगे और आप लोगों की भी शादियां होंगी, ठीक है ना, जो लड़के हैं उनकी बीवियां होंगी, जो लड़कियां उनके शौहर होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि देखिए ये जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप होता है ना, ये सबसे क्लोज रिलेशनशिप अल्लाह ताला ने बनाया, सबसे क्लोज ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। इस रिलेशनशिप की जो इंपॉर्टेंस है ना, इस रिलेशनशिप की कैसी क्या नेचर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप, इसको आपने अगर सीखना है ना, समझना है ना, तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से ज्यादा अच्छी और कोई जगह नहीं है, ठीक है, कि आप ससुरम की अपनी वाइफ्स के साथ कैसी रिलेशनशिप थी, वाइफ्स की नबी अलैहिस्सलाम के साथ कैसी रिलेशनशिप थी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली इस दौर के अंदर लोग जो है ना इस रिलेशनशिप को कहां से सीखते हैं बताएं जरा, कहां से सीखते हैं कि जी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? नेट से सीखते हैं? नहीं, नेट पे तो मैंने नहीं कहा, मैं बोल सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, थेरेपी से सीखते हैं, थेरेपी और भी कोई नहीं सिखा सकता जी, टीवी से सीखते हैं, ठीक है, मूवीज से सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं, ड्रामों से सीखते हैं, इंडिया में कहते हैं सीरियल से सीखते हैं, पाकिस्तान में उनको हम ड्रामे कहते हैं, इंडिया में उनको सीरियल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी जगह है जहां से सीखते हैं, नॉवेल से सीखते हैं, ठीक है ना, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स जो होती हैं उनसे सीखते हैं कि जी कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो सोर्सेज है ना, टेलीविजन और ड्रामे और मूवीज और नॉवेल्स, ठीक है, ये जो बनाने वाले लोग होते हैं ना, दे हैव एब्सोल्यूटली नो आइडिया व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर, ठीक है, दीज पीपल हैव नो रिलेशनशिप टू विद अल्लाह, जिसने कि बनाया है ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है। ये लोग तो वो होते हैं कि जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जब ही तो ये इतने गंदे गंदे और इंडिसेंट किस्म के काम कर रहे होते हैं, टीवी के ऊपर आकर के और नॉवेल्स के अंदर जो लिखते हैं, इतनी इंडिसेंट, इतनी बेशर्म किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्या मसला हो गया है कि हम उनसे जाकर के सीख रहे होते हैं कि भाई कैसे रहना चाहिए, है ना, तो हम उनसे जो चीजें सीखते हैं ना वो बिल्कुल झूठी और गलत बातें होती हैं, ठीक है ना। अब जब वो बातें हमने सीख ली होती हैं टीवी देख देख करके, फिल्में देख देख करके, नॉवेल्स पढ़ पढ़ करके, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम हमारी शादी का वक्त आता है ना, तो फिर हम समझते हैं कि जी अब जो शादी हो गई है ना, तो अब वही सब कुछ होना चाहिए जो कि हमने ड्रामे में देखा था, जो कि हमने फिल्म में देखा था, जो कि हमने नॉवेल में पढ़ा था, ठीक है ना। अब वो तो सारे के सारे झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना। अब झूठ तो वो चीज होती है जो कि हकीकत में होती ही नहीं है, जो कि रियलिटी में होती ही नहीं है, इसी को तो झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब रियलिटी में शादी होती है ना, तो फिर वो झूठ जो होते हैं ना, वो हम सोच रहे होते हैं कि वो सब कुछ होने वाला है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ना फिर क्या होता है कि पीपल एंड अप इन अ वेरी वेरी मिजरेबल लाइफ, ठीक है ना, दिस मैरिटल लाइफ बिकम्स वेरी मिजरेबल, बहुत ही बुरी हो जाती है, क्योंकि आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं अपनी वाइफ से, और वाइफ अब ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रही होती हैं हस्बैंड से, जो कि मीटी नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से ना फिर वो लड़ाइयां होती हैं, ये उल्टा सीधा पता नहीं क्या, ठीक है, दुनिया की भी जिंदगी खराब हो जाती है, और इसकी वजह से फिर आखिरत की भी जिंदगी खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ना इफ समवन इज डूइंग दीज मिस्टेक्स, कि या तो वो टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ये कि देखना वैसे ही गुनाह है, ठीक है ना, बिकॉज हराम चीज अल्लाह ताला ने मना किया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि आप तो इन चीजों को देख ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने मना किया है, ठीक है। तो सिर्फ इससे ये नहीं है कि जी गुनाह लिखा जा रहा है, बस बाद में तौबा कर लूंगा, गुनाह माफ हो जाएगा, नहीं, इससे आपका एक मिजाज भी बन रहा है, आपका एक माइंडसेट बन रहा है, आपकी आपकी थिंकिंग बन रही है ये चीजें देख देख करके, ठीक है। तो इनकी वजह से ना फिर आपके ना बाद में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होने वाली है, बहुत ज्यादा आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। या ये कि इवन अगर आप नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं तो नॉवेल्स के अंदर भी जो है ना जो चीजें आप पढ़ रहे होते हैं ना, दीज आर नॉट, पहली बात तो वो झूठ होती है, दूसरी बात उसके अंदर इनडिसेंट और बेहयाई किस्म की चीजें होती है, शेमफुल किस्म की चीजें होती है, जिनको पढ़ने से भी गुनाह होता है, और फिर आपकी माइंडसेट भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज एंड जस्ट यू नो अपनी जिंदगी को खराब ना करें, ठीक है। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद दिनों पे उम्मीद है कि उन लोगों की भी इस तरह से शादियां होंगी। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें कि कैसी जिंदगी होनी चाहिए, कि ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये रिलेशनशिप जो होता है वो इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर था, अपनी वाइफ के ऊपर था, ठीक है ना। और ये ट्रस्ट जो है वो उनकी वाइफ ने भी बनाया था कि भाई उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, इतना ट्रस्ट किया कि जब शादी हुई थी ना तो उनके पास कितनी वेल्थ थी। हमने पिछली दफा पढ़ा था ना कि खदीजतुल कुबरा जो थी वो बहुत अमीर औरत थी और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत गरीब थे, ठीक है। वेल्थ कुछ नहीं थी आप के पास, लेकिन नबी खदीजतुल कुबरा ने इसके बावजूद उनके ऊपर ट्रस्ट किया कि चूंकि ये सच्चे हैं, नेक हैं, अमानतदार हैं, मैं इनसे इसलिए शादी करूंगी। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की वेल्थ देख के शादी करनी होती तो फिर तो कर ही नहीं सकती थी, वेल्थ तो थी नहीं आप के पास, ठीक है। उन्होंने नेकी देख करके आप से शादी करी थी, ठीक है। उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने भी उनकी नेकी को देख करके उनसे शादी करी, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे फिर हमारी लाइफ इस दुनिया में भी बनती है और आखिरत की भी लाइफ बन जाती है। अब देखें खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इतना नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया, ये तो हम आगे जाकर के मजीद पढ़ेंगे, तो उनको जन्नत के अंदर सारी औरतों का सरदार बना दिया गया। सारी औरतों की लीडर कौन होंगी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया ना कि बस हाँ मक्का मुकरमा में पैदा हुई थी तो इस वजह से हो गया ऐसा, ठीक है ना। उन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन्होंने बहुत तकालीफ बर्दाश्त करी, तब उनको अल्लाह ताला ने ये अजर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो गारे हिरा से उतर करके जो है वो अपने घर तशरीफ ले गए और वहां पे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो मुझे, ठीक है। इसका ज़म्मिलूनी ये अरबी का एक 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 वर्ड है, ठीक है। तो हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको चादर भी उड़ा दी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जैसे बहुत खौफ की वजह से ना आपको शिवरिंग शुरू हो जाती है, ठंडक लगनी शुरू हो जाती है, तो इंसान चाहता है कि मुझे कवर कर दो ताकि शायद मेरी ये शिवरिंग खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन ये शिवरिंग जो होती है उसका ताल्लुक तो खौफ के साथ होता है, या कभी आपको बुखार होता है तो भी शिवरिंग शुरू हो जाती है, तो वो कंबल डालने से वो शिवरिंग खत्म नहीं होती क्योंकि वो तो बुखार की वजह से थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कंबल उड़ा दें, आपको ब्लैंकेट उड़ा दें। खैर, तो ये जब कुछ हो गया ना, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर में जब जरा रिलैक्स होए और नॉर्मलाइज हो थोड़े से, तो फिर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये सारी चीजें बताई कि एक आदमी आया था और उसने मुझे इस तरीके से पकड़ा और मुझे पढ़ने के लिए कहा और मुझे नहीं पता वो कौन है और क्या है, ठीक है। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लिया दी, आप को बताया कि आप फिक्र ना करें, आप जो है ना वो इतने अच्छे इंसान हैं और इतना अल्लाह ताला के बंदों का आप ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, आप जो आपके रिश्ते हैं उन रिश्तों को आप मेंटेन करके रखते हैं, यू डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप्स अवे ऑफ, ठीक है। आप जो है वो गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको यकीनन जाया नहीं करेगा, यानी इट मीन्स के ऐसा नहीं होगा कि बस आप ऐसी जो है वो बस आपकी जिंदगी बेकार की गुजर जाए, अल्लाह ताला यकीनन आपसे कोई बड़ा काम लेने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, आप अच्छा ये बात है, अच्छा चले आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे, तीन मरतबा आप भी कुछ पूछ रहे हैं। दो तीन नॉवेल्स कोर्स में होते हैं, हाँ वो और भी बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं। तो उन नॉवेल्स का जो है ना, वो पहली बात तो ये कि आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो पहले उसको देखें, ठीक है, कि वो नॉवेल्स के अंदर है क्या, ठीक है। मैं जानता हूँ ऐसे स्कूल्स में कि होते हैं ये, लेकिन दे डोंट एक्चुअली चेक कि आपने सारा का सारा नॉवेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो वो आपको कोई टेस्ट वेस्ट उसके ऊपर नहीं देना होता है, ठीक है? तो कोई इतना जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें भी सही हर नॉवेल को, ठीक है? खैर, आपके पेरेंट्स को जो देख लेना चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज है ना, तो फिर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी ये कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉवेल्स हों, नॉवेल्स के अलावा और भी बुक्स होती हैं। एनीवे, दिस इज अ टॉपिक जो कि डिस्कस करना चाहिए। स्कूल्स की सिलेक्शन जब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? व्हाई आर यू गोइंग टू सच एन स्कूल, सच ए स्कूल कि जहां पर के मैंडेटरी उन्होंने इस किस्म की फिक्शन नॉवेल्स पढ़ने के लिए कहा हुआ है, ठीक है ना? मतलब दिस इज आवर चॉइस, नो वन हैज फोर्स्ड अस ना, कोई प्रेसिडेंट साहब ने कोई लगाया ऊपर से कि नहीं इसी स्कूल के अंदर दाखिल कराना है ना, तो हमारी चॉइस है ना, वी पुट आवरसेल्फ इनटू दिस सिचुएशन, वी शुडंट बी, ठीक है? चलें, अच्छा, किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आए ना, तो उन्होंने आप यानी अपने आप को फिर बाद में या पहले किसी वक्त इंट्रोड्यूस भी करवाया कि मैं जिब्राइल हूँ और आप अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पहली दफा ये बात सुनी थी, तो ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं भाई, ये आप जिब्राइल हैं मैं, अच्छा तो खैर। अच्छा, इसके बाद जो है ना, फिर हदीयतुल कुबरा तनाना, उन्होंने ये जो शुरू की सारी बातें करी तसल्ली वाली ना, तो उसके बाद वो आप सल्लम को लेकर के अपने कजन के पास गए, जिनका पीछे भी कई दफा जिक्र आ चुका है। वो जो कजन थे, चचा जात कजन थे, यानी अब्बू के भाई के बेटे, उनका नाम था वरका बिन नौफिल, ठीक है? तो वरका बिन नौफिल अगरचे के ये कुरैशी थे और मक्का मुकरमा के रहने वाले थे, लेकिन इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, तो इस वजह से ना ये कन्वर्ट हो गए थे पहले, ठीक है? यानी ये मक्का मुकरमा वाले लोगों का जो रिलीजन था उसको छोड़ दिया था इन्होंने, और इन्होंने जुडेज्म यहूदियत को कबूल कर लिया, तो यहूदी बन गए, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने और किताबें पढ़ी, इनको ईसा अलैहि सलाम का भी पता चला, तो फिर ये यहूदियत को भी छोड़ करके ये ईसाई बन गए थे, ठीक है? यानी ईसा अलैहि सलाम के ऊपर ईमान लेकर आ गए थे, और ये बुतों की परस्तिश बिल्कुल भी नहीं करते थे, ये गुनाहों से बचते थे, ये शराब वगैरह इस तरह की जो गंदी चीजें होती थी इनसे दूर रहते थे, ठीक है? तो वरका बिन नौफिल जो थे, ये एक स्कॉलर कहलाए एंशियंट बुक्स के, तो उनके पास हजरतुल कुबरा ताना ले गई, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सारी बातें सुनी ना, तो उन्होंने कसम खा करके कहा कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, खदीजा, यानी खदीजा, तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई, तो अगर तुम सच कह रही हो ना अल्लाह, तो इसमें शक नहीं कि इनके पास वही फरिश्ता आया है जो कि मूसा अलैहि सलाम के पास आया करता था, ठीक है? और ये इस उम्मत के नबी हैं, आप यकीन कर लें इस बात के ऊपर, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये इस तरह की जो इनकी साइंस है ना, ये तो मैं पहले से नोट कर रहा हूँ, ठीक है? पहले से मैं जान रहा हूँ कि हाँ कुछ है इनके साथ, और ये इस उम्मत के नबी बनने वाले हैं, तो अब तो बात और कंफर्म हो गई, ठीक है? अच्छा, ये बात उन्होंने कही, और फिर उन्होंने आप सल्लम के सर को बोसा भी दिया, ठीक है? यानी जो फोरहेड को किस करते हैं, जिस तरह आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करें, ताजीम करें, तो ऐसे करते हैं, तो बोसा भी दिया, और फिर उन्होंने कहा कि काश कि मैं उस वक्त जिंदा रहता कि जबकि आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे, अगर मैं उस वक्त जिंदा रहता तो मैं आपकी मदद करता और इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर आपके साथ हिस्सा लेता, काश कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुठलाएगी, यानी आपकी कौम के लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, नौज बिल्ला, आप सही नहीं बोल रहे, ठीक है? आपकी कौम आपको जब झुठलाएगी ना, और आपको तकलीफ भी पहुंचाएगी, और आपके साथ जंगे लड़ी जाएंगी, और आपको यहां से निकाल दिया जाएगा, मक्का मुकरमा से निकाल दिया जाएगा, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपका साथ दूंगा और अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा, ठीक है? तो उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ये बात सबसे ज्यादा अजीब लगी कि ये लोग मुझे निकाल देंगे, मेरी कौम मुझे निकाल देगी, क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लोग इंतहाई रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना? जब आपको याद होगा थोड़े दिन पहले वो पिछली क्लास के अंदर जो बात हुई थी, 35 ईयर्स की जब एज हुई थी और काबतुल्ला की तामीर के वक्त झगड़ा हो गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे तो सब बोल उठे थे ना कि हाजा मोहम्मद हाजल अमीन रदीना, हम खुश हैं इस बात के ऊपर कि ये हमारा फैसला करेंगे, ठीक ठीक है ना, हत्ता के उस वक्त शैतान ने आदमियों की शक्ल, आदमी की शक्ल में आकर के नौ को मना भी करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं तुम क्या एक नौजवान लड़के से अपना फैसला करवा रहे हो, ये तुम्हें गलत बता रहा है और ये ऐसा है वैसा है। उन लोगों ने इवन इबलीस की बात नहीं मानी, हालांकि ये लोग। अच्छा एक बड़ा मजे का क्वेश्चन, ठीक है, कि जब ये वाकया हुआ था काबतुल्लाह की तामीर वाला ना, और फिर इन्होंने ये फैसला किया था कि अगले दिन जो है वो एक जो भी आएगा अंदर तो हम उससे फिर फैसला करवाएंगे कि क्या करना चाहिए हजर असद के बारे में, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने जब आपसे सरम से कहा कि भाई आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उस वक्त इबलीस ने आकर के इन लोगों को मना करने की कोशिश करी थी कि नहीं करो उनसे फैसला, इनकी बात ना मानो, उनकी बात ना मानो, ये तो नौजवान है, तुम तो इतने बड़े बड़े लोग हो, तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो, ठीक है। अच्छा इन लोगों ने इबलीस की बात नहीं मानी, ठीक है, यानी उस आदमी की बात नहीं मानी, हालांकि उसने कोशिश बड़ी करी। तो अब सवाल यह है कि इन लोगों ने जो है वो इबलीस की बात नहीं मानी, ये कैसे हो गया? ये लोग कोई बहुत नेक और ऐसे लोग तो नहीं थे, ये तो बुतों की परस्तिश करने वाले लोग थे, शराब पीने वाले लोग थे और जुल्म भी करते थे, लेकिन इस मौके के ऊपर ना इन्होंने इबलीस की बात नहीं मानी, ठीक है, इनको ये तौफीक कैसे मिल गई इबलीस की बात ना मानने की? जी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी, अल्लाह से,
अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाल दी।
जज़ाकुमुल्लाह, लेकिन लिख करके जवाब देना होता है इस क्लास में, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर ना एक बात वैसे दिल में आती है, तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा अल्लाह ने उनके दिल में बांटा जी, नहीं। अच्छा देखें इस वाक्य के 7 साल के बाद, ठीक है, अराउंड 7 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन लोगों को एक बात बताई थी, ठीक है, कि भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये बुतों की परस्तिश छोड़ दो, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने नहीं मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो ये सारी बातें जो कह रहे हैं तो ये तो उस वक्त भी ट्रू थी ना, आप सल्लम तो सादिक और अमीन उस वक्त भी थे, तो इन्होंने उस वक्त तो बात नहीं मानी, इस वक्त बात मान ली और शैतान की बात नहीं मानी, ठीक है। सवाल ये है कि इन्होंने शैतान की बात जो नहीं मानी ना, ये कैसे हुआ कि शैतान ने आके इनको वरगलाने की कोशिश करी, हत्ता के इंसान बन करके आ गया, लेकिन इन्होंने शैतान की बात नहीं मानी, इसकी वजह पूछ रहे हैं आपसे। अल्लाह ने उनके दिन भाई बस करें 3 दफा लिख चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो सवाल यह है कि शैतान से ये कैसे बच गए इस मौके पर, ठीक है ना। एक ठीक है, नया नया बंदा था तो चले नए बंदे की बात ही माननी चाहिए। एक दिन पहले एक वाकया हुआ था यहाँ पर, एक दिन पहले, ठीक है, तो उससे इसका ताल्लुक है डेफिनेटली। वो क्या था कि इन्होंने ये जो फैसला किया था ना कि अगले दिन जो बंदा आएगा हम उसे फैसला करवाएंगे, ये क्यों किया था? अच्छा अच्छा तो फिर अच्छा दे हैव सो मच ट्रस्ट, शैतान वाज अनरिकग्नाइज्ड, नहीं नहीं। आप लोगों को एक बात बताई थी जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी ना सुनी होगी, तो वो ये थी कि जब ये लोग बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे और उन्होंने अपनी सोर्ड्स भी ड्रॉ कर ली थी और कसमें खा ली थी कि हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कर लिया था, ठीक है, तो उस वक्त जो है इनमें जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी थे और वो जो थे ना वो बहुत नेक आदमी भी थे, ان کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ, ابو امیہ بن مغیرہ جن کا کہ لقب تھا حذیفہ, انہیں ایکچولی اصل نام تھا حذیفہ اور ان کی کنیت تھی ابو امیہ بن مغیرہ. ٹھیک ہے, ابو امیہ بن مغیرہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ لیٹس ریزالو دس ان دس مینر, ٹھیک ہے, کہ اگلے دن جو بھی انٹر ہوگا نا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے. ان لوگوں نے اس نیک بزرگ کی بات مان لی, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اس نیک بزرگ کی بات مان لی تھی. یہ جو بزرگوں کی, نیک بزرگوں کی, نیک بزرگوں کی بات ماننا جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ برکت رکھی ہے, یہ پاور رکھی ہے کہ یہ انسان کو شیطان سے بچا لیتی ہے. ٹھیک ہے, جو بزرگوں کی بات مانتا ہے نا, نیک بزرگوں کی, ہر ٹائپ کے بزرگ نہیں, نیک بزرگوں کی جو بات مانتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی شیطان سے حفاظت فرما دے. یہ ایک اصول ہے, یہ ایک پرنسپل ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آؤٹ آف دی آرڈینری یہ لوگ تو شیطان کی ہر موقع پہ بات مانتے تھے, شیطان ہی تو ان کو لڑواتا تھا, شیطان ان سے بتوں کی پوجا کرواتا تھا, شیطان ان سے شراب پلواتا تھا, شیطان ان سے سارے گندے گندے کام کرواتا تھا, لیکن اس موقع پہ یہ شیطان سے بچ گئے. بھائی کیسے بچ گئے؟ انہوں نے ایک نیک بزرگ کی بات مان کر کے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, تو جن کے جس میٹر کے اندر ہمارے اوپر ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا, اس میٹر میں ہم شیطان سے بچ جاتے ہیں, ایون ایف اگر ہم دوسرے میٹرز میں شیطان سے نہیں بچ رہے, کیونکہ دوسرے میٹرز میں ہم بزرگوں کی بات نہیں مان رہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میٹر میں انہوں نے بزرگوں کی بات مانی تھی, بچ گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک اصول ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا, ورنہ باقی ساری چیزیں اللہ نے دل میں بات ڈال دی, تو بھائی اللہ تو ہر چیز کے اندر ہی دل میں بات ڈالتے ہیں, اس معاملے میں کیا. ٹھیک ہے, یہ کون سی ایسی ایکسیپشن ہو گئی؟ بیکاز اللہ میڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انٹر دا مسجد فرسٹ. ٹھیک ہے, وہ سب الگ باتیں. اینی وے, تو یہ بات یاد رکھیے گا, نیک بزرگ جو ہوتے ہیں نا ان کو امپورٹنس اتنی دیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کریں. اچھا, پھر انہوں نے کہا, ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں آپ کو, یعنی میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حیران ہو کر کے کہا کہ بھائی میری قوم مجھے نکال دے گی, وہ تو اتنی میری ریسپیکٹ کرتے ہیں, اتنی میری باتیں مانتے ہیں, ایسا ایسا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں, اس لیے کہ جو میسج آپ لے کر کے آئے ہیں نا, جس قسم کی بات آپ ان لوگوں سے کہیں گے نا ابھی تھوڑے دن کے بعد, تو جب بھی کوئی اس طرح کا میسج لے کر کے آئے ہیں نا, تو اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, شروع میں تو اس کی لوگوں نے بہت مخالفت کری ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑا ہے, اپنی جگہ چھوڑنی پڑی ہے. ٹھیک ہے نا, اپنا شہر چھوڑنا پڑا ہے, اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم بالکل اگر ان کی بات نہیں مان رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا, بس ایک آدھ لوگ مان رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ایسی ہوتی ہے کہ نبی کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے. ٹھیک ہے, ہجرت کرنے کے لیے نہیں کہتے, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور اس قوم کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ صالح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوا, اور ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا, شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. پھر اللہ کے نبی پھر عذاب کے وقت جو ہے نا, پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کو پھر اللہ تعالیٰ نا پھر ایونچولی حکم دیتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں کسی دوسری جگہ. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے نبی جو ہے نا وہ واپس اپنی اس ملک میں آتے ہیں, اور پھر ہی از گیون وکٹری. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا. ٹھیک ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا, اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے لیے کہا, اور پھر واپس آئے مکہ مکرمہ کے اندر اور ان کو وکٹری ملی. جی, ورقہ بن نوفل صحابی نہیں کہلائیں گے. ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ کہلائیں گے, ایک مسلمان تو کہلائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو وہ ایمان لے کر کے آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہ اس لیے نہیں بنے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ لوگوں کو کال کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے نا, اوپنلی کال کرنا شروع کرو. تو ورقہ بن نوفل جو ہے نا, ان کا پھر ایک ڈیڑھ سال, کچھ ہی دنوں کے بعد بلکہ ان کا انتقال ہو گیا. हाँ काफी ओल्ड थे वो, ठीक है। अच्छा तो उन्होंने फरमाया कि भाई जिसने भी इस तरह की बात करी है ना, तो उसको उसके लोगों ने यहाँ से यानी अपने घरों से निकालने, अपने घर से निकालने के ऊपर मजबूर किया है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो थोड़े दिन के बाद फिर बरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया, और उनको मक्का मुकरमा में जो मशहूर कब्रिस्तान है, जहां पर के ख्वाजा अब्दुल मुतलिब को भी दफन किया गया था, हुजून का कब्रिस्तान कहलाता है, हुजून के एरिया के अंदर, तो वहीं पर जो है वो इनको भी दफन किया गया, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में फिर बाद में अपने सहाबा को बताया कि मैंने वराका को जन्नत में देखा है, और वो रेड कलर का यानी सुर्ख लिबास पहने हुए थे, ठीक है। तो अब जब ये वाकया हो गया ना, उसके बाद जो है ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम को फिर हर वक्त इंतजार रहने लगा कि वो जो थे ना, जो आए थे और उन्होंने मेरे साथ ये किया, तो दोबारा आए, ठीक है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब फर्स्ट मुलाकात हुई तो उसमें तो एक इंस्टेंट रिएक्शन क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम को बहुत खौफ महसूस हुआ, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बहुत एंक्शियसली उनका इंतजार करने लगे कि वो जो आए थे वो दोबारा कब आएंगे, दोबारा कब आएंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला था कि अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं आना, ठीक है। 2.5 years, 2.5 साल गुजर गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आने वाले के पास, इस तरह से नहीं है, ठीक है, खुल करके नहीं है। तो इस दौरान ना नबी फील करते लिटरली डिप्रेस फील करते थे, हत्ता के इतना ज्यादा डिप्रेशन फील करते थे, यानी डिप्रेस का मतलब गम ज्यादा, और ऐसा लगता था कि जैसे बस अब जीना नहीं चाहते, जिंदा नहीं रहना चाहते, ठीक है ना। अब होता है ना कभी बहुत ज्यादा इंसान डिप्रेस हो जाता है, तो वो कभी अपनी सुइसाइड कर लेता है, अपने आपको मार देता है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ना इस तरह की भी कैफियत आती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस कैफियत में कभी पहाड़ के ऊपर जाते थे और ऐसा दिल चाहता था कि अपने आप को गिरा करके अपने आप को मार लें, ठीक है। लेकिन जब ऐसे करने की कोशिश करते थे ना, ऐसा सोचते थे और ऊपर जाते थे, तो एक आवाज आती थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब आवाज आती थी ना, तो रुक जाते थे, ठीक है। तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो 2.5 साल तक चलते रहे, ठीक है। और आप ससुर को आवाज आती रही लेकिन नजर कुछ भी नहीं आता था। अच्छा ये जो इतनी इंटेंस मोहब्बत पैदा हो गई, ये मोहब्बत कैसे पैदा हुई, इसके ऊपर भी उलमा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को जो पकड़ करके ऐसे दबाते थे ना, तो इस दबाने के अंदर एक्चुअली जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्ते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक एक लाइट रखी थी, एक नूरानियत रखी थी ना, ठीक है, जिसको के यानी फरिश्तों वाली एक सिफत कहते हैं, ठीक है, वो सिफत एक्चुअली नबी अलैहिस्सलाम के अंदर ट्रांसफर हो रही होती थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब दबाया तो वो थोड़ी ट्रांसफर हुई, ठीक है ना। इसके लिए खास टर्मिनोलॉजीज भी हैं, नस्बत की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी ट्रांसफर हुई, सेकंड टाइम में और ज्यादा ट्रांसफर हुई, और थर्ड टाइम जब किया ना तो फिर वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गई नबी अलैहिस्सलाम के अंदर, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम अगरचे के ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन उनके अंदर जो है ना फिर एक मलकूती सिफात आ गई, मलक मलक कहते हैं फरिश्ते को, ठीक है। तो अब जो है ना इनके और आप के दरमियान जो है ना एक ऐसी बॉन्डिंग पैदा हो गई, ऐसी रिलेशनशिप पैदा हो गई कि अब जो है ना यू कैन नॉट लिव विदाउट द अदर पर्सन, ठीक है ना। तो अब इतनी मोहब्बत हो गई कि इस वजह से नबी सलाम फिर बाद में जो है वो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। बहरहाल ये तो चंद, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई अगेन व्हाई वरका बिन नौफल इजंट कंसीडर्ड अ सहाबा एज द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑलरेडी गेन्ड नबुवत व्हेन ही मेट हिम एट दैट टाइम। जी सहाबी उसको कहते हैं कि जब नबी लोगों को कॉल करें, ठीक है, तो उस कॉल के ऊपर वो लबैक कहें, वो अफर्मेटिव में जवाब दें और नबी की बात को मान करके उन पर ईमान लेकर के आ जाएं, ठीक है। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है सहाबी की, ठीक ठीक है, तो वरका बिन नौफिल के साथ ये हुआ नहीं, क्योंकि वरका बिन नौफिल का ना इंतकाल उस वक्त से पहले हो गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कॉल किया, ठीक है, इन्होंने चूंकि उस कॉल को सुना नहीं तो इस वजह से ना ये सहाबी की डेफिनेशन में नहीं आते, ठीक है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, जन्नत में ये वैसे ही पहुंच चुके हैं, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर भी थे, इसको कहते हैं दीन हनीफ के ऊपर थे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के ऊपर ये, ठीक है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वे सहाबी में आएंगे कि नहीं आएंगे। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो मेट जिब्राइल एज व्हेन ही केम टू क्लीन हिज हार्ट, हाँ, लेकिन उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के ना तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं जिब्राइल हूँ और आप अल्लाह के रसूल हैं, और ना जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम को इस तरीके से पकड़ करके जो है वो दबाया था, और ना नबी अलैहिस्सलाम सलाम को कोई कुरान की आयात सुनाई, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही एक ऐसा, उस वक्त तो खाली जिब्राइल अलैहिस्सलाम अकेले भी नहीं थे बल्कि इस्राफील अलैहिस्सलाम भी उनके साथ आए थे ना, ठीक है, तो वो अलग किस्म की इंटरेक्शन थी, नबी अलैहिस्सलाम सलाम को नहीं पता था कि वो सब कुछ क्या हो रहा है, और ये अलग किस्म की इंटरेक्शन थी, ठीक है। अच्छा, ये जब हो गया तो फिर उसके बाद जब ये, अच्छा ये जो टाइम है ना जिसके अंदर के वही रुक गई, पांच आयतें वही की नाजिल हुई फिर ये रुक गई ना, तो इस पूरे पीरियड को कहते हैं अरबी में फतरतुल वही, फा ता अलिफ बा ता जो होती है ना, फतरतुल वही, वही का रुक जाने वाला पीरियड, ठीक है, तो ये कुछ बुक्स में 2.5 years लिखा है, कुछ बुक में ये अराउंड 3 years लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है ना एक दफा क्या हुआ कि जब ये टाइम पीरियड गुजर गया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो मक्का मुकरमा में ऐसे ही कहीं स्ट्रीट्स के ऊपर जा रहे थे, गलियों में जा रहे थे, ठीक है, तो एक जगह पर पहुंचे तो आप सरम को जो है ना उनको आप सरम ने ऐसे ऊपर ऐसे करके देखा ना जैसे कि आप सूरज को, खैर सूरज को तो कोई नहीं देखता, चांद को देखते हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ऐसे देखा ना जरा ऊंची नजर करके, नॉट एग्जैक्टली टॉप और ना जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बल्कि दरमियान का 45 degrees का एंगल जिसको कहते हैं, ठीक है, तो आपको ना यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए, ठीक है, उनके कुछ फेशियल फीचर्स तो वही होंगे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सलाम पहचान गए कि हाँ ये वही थे, ठीक है, लेकिन इस दफा जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए ना तो वो ऐसे नजर आए कि बहुत बड़े साइज में थे, बहुत बड़े, और बाकायदा एक कुर्सी जो है ना वो हवा के अंदर जैसे सस्पेंडेड कुर्सी थी, उस कुर्सी के ऊपर आकर के वो बैठ गए, ठीक है, और उन्होंने जो है ना वो एक बाकायदा ड्रेस भी पहना हुआ था ग्रीन कलर का, जैसे सिल्की क्लॉथ होता है, रेशम का कपड़ा होता है, रफ रफ उसको कहते हैं, उस तरह का उन्होंने कपड़ा भी बाकायदा ड्रेस भी उन्होंने पहना हुआ था ग्रीन कलर का रफ रफ क्लॉथ, ठीक है, और उनका साइज बहुत बड़ा था और उनके बाकायदा विंग्स थे पर, ठीक है, कितने थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया सहाबा को कि 600 पर थे, 600, ठीक है, तो इतने बड़े थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको देख रहे थे ना तो ऑल द वे टू द राइट एंड ऑल द वे टू द लेफ्ट, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वाज फिल्ड विद जस्ट जिब्रील अलैहिस्सलाम्स प्रेजेंस, उनके वजूद से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो फिल हो गया था, इतने वो बड़े थे, ठीक है। अच्छा, जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ये आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस फॉर्म में देखा तो क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि कोई इस तरह से कोई थोड़ी देखता है, ठीक है, किसी चीज को, तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली जो है वो इस तरह का मामला हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जो है ना वो चकरा करके बेहोश होने लगे, हुए नहीं लेकिन जैसे गिर गए, तो जब गिरने लगे ना तो उसी वक्त जो है वो जिब्राइल अलैहि सलाम जो है ना जो वो इस तरह से नजर आ रहे थे ना तो वो वहां से फिर करीब आना शुरू हुए, ठीक है, करीब इस तरीके से आए जैसे कि नजम की आयत है, तो वो करीब हो गए, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नजम में इस वाक़े को बयान करते हुए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ने उफ़ुकुल आला के ऊपर देखा, उफ़ुक कहते हैं होराइजन को, ठीक है, और आला मीन्स के वो बिल्कुल नीचे नहीं थे बल्कि ऊपर की तरफ थे, आला थे, ठीक है, अब वहां से जो है ना वो जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम को बेहोश होते हुए देखा ना, गिरते हुए देखा, तो बहुत तेजी के साथ जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास पहुंचे, ठीक है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज किया ना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, दना का तो वर्ड होता है करीब हो गए, दना का मतलब होता है करीब हो गए, और उसके बाद फरमाया फतदल्ला। फतदल्ला जो है ना, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मान है। कभी आपने टार्जन स्विंग करी है? अगर आप बड़े होकर के आर्मी वगैरह में जाने का शौक रखते हो ना, तो उसमें एक चीज होती है टार्जन स्विंग, वो टेस्ट करते हैं वगैरह, उसको टार्जन स्विंग करनी आती है कि नहीं आती। ठीक है, टार्जन स्विंग इज समथिंग लाइक कि जैसे दरख्त के ऊपर ना, कोई बड़ा सा दरख्त हो जैसे, ठीक है, उसके ऊपर आप ना रस्सी बांध दें किसी ब्रांच के ऊपर, ठीक है, और फिर ना आप दूर उस रस्सी को दूसरे एंड से पकड़ के खड़े हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद ना आप जो है वो छलांग मार दें नीचे, ठीक है। तो अगर आप छलांग मार दें तो क्या होगा, आपने रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उस रस्सी के साथ जो है ना वो स्विंग करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे? यू स्विंग, इसको टार्जन स्विंग कहते हैं, ठीक है। खैर, एनीवे, समथिंग लाइक कि भाई आपने जैसे किसी जगह पर रस्सी बांधी हुई है, फिर आपने उस रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऊंची जगह रस्सी बांधी है, एक एंड से रस्सी को पकड़ा हुआ है, और फिर आप जो है ना उस रस्सी को पकड़ करके छलांग मार दें तो वो स्विंग करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। अब ये जो स्विंग करते हुए नीचे आते हैं ना, इसको कहते हैं फतदल्ला, ठीक है, नीचे आना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब अनफॉर्चुनेटली जो लोग मौजूद हैं ऑनलाइन उनको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है कि जैसे आप इधर खड़े हुए थे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे खड़े हुए, ठीक है, यहां पे आपको पहुंचना है, ठीक है। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम यहां पर है और नबी अलैहिस्सलाम यहां पर जमीन पर है, ठीक है, तो अगर उनको ना यहां से यहां पहुंचना है ना, ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि वो ऐसे पहुंच जाए इधर, ठीक है, और एक तरीका यह है कि वो स्विंग करते हुए ऐसे पहुंचे, है ना। आपको पता है विच वन इज फास्टर? एग्जैक्टली। हालांकि जो डिस्टेंस है, पाथ का जो डिस्टेंस है, वो ऐसे पहुंचने में कम है, ये शॉर्टर डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन टाइम इसमें ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर यूं करके पहुंचेंगे ना, डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो अगरचे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, यूं करके भी वो खुद रस्सी को थोड़ी उन्होंने पकड़ी हुई थी, ठीक है ना, वो तो अपनी स्पीड पर आ रहे थे ना। ऐसे भी आते तो अपनी स्पीड पर ही आते, ऐसे आते तो भी अपनी स्पीड पर आते, लेकिन अल्लाह ताला वांटेड हिम टू रीच हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द क्विकेस्ट वे, सबसे तेजी के साथ पहुंच जाए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ना उनको स्विंग वाला पैथ कि तुम स्विंग करके जाओ, ठीक है, इतना भी टाइम तुम ज्यादा देर ना लगाओ जितना कि यूं करके आने में लगती है। स्ट्रेट लाइन अगर आप बना करके आए उसमें ज्यादा टाइम लगता है, यूं करके आने में कम टाइम लगता है, ठीक है। तो तुम दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, इसके बाद सूरह नजम में है कि वो नबी अलैहि सलाम के इतना करीब आ गए कि जितना के घरों में होगा आपके टॉयज में, तीर कमान बो एंड एरो, है ना, तो उसमें एक चीज होती है एरो पतला सा, ठीक है, और एक होता है बो। बो की क्या फॉर्म होती है, शक्ल क्या होती है, द लेटर डी, ठीक है ना, डी की शक्ल होती है ना, यूं करके लाइन और यूं करके ऐसे डी बनता है ना, ठीक है। तो जो तीर कमान होती है ना, कमान, तो कमान जो होती है वो डी की फॉर्म में होती है, ठीक है, ये लाइन हो गई और ये डी ऐसे हो गई, कमान भी ऐसे ही होती है, तो उसमें तीर को यूं करके पकड़ते हैं, फिर ऐसे छोड़ते हैं, वो जाता है, ठीक है। तो ये जो डी होता है ना, कमान जिसको उर्दू में कहते हैं और अरबी में उसको कॉस कहते हैं, कॉस, ठीक है, ये जो रेनबो होती है ना, वो भी उसको भी कॉस कहते हैं, क्योंकि रेनबो भी ऐसी डी की इस तरह की फॉर्म की होती है, ठीक है ना, जब भी तो उसको रेनबो कहते हैं, यूं बो, ठीक है। तो अरब लोग ये कहा करते थे कि जब दो लोग बहुत करीब आ जाते थे ना, तो उसके लिए वो कहते थे कि ये इतना करीब आ गए हैं कि जितना के दो बोस करीब आ सकती हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो है ना वो दो बोस का डिस्टेंस रह गया। क्या मतलब दो कमानों का डिस्टेंस, कि जी एक तो ये हो गया डी, ठीक है, और एक डी उल्टा, यूं करके ये एक उल्टा डी हो गया, ठीक है, एक सीधा डी एक उल्टा डी, ठीक है। तो इन दोनों डीज के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम के दरमियान इस डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस रह गया, यानी आप अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास इतना करीब आ गए, ठीक है, और फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम, अच्छा इसके ऊपर फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बस इतना बता देंगे कि इतना करीब आ गए तो उन्होंने ना नबी अलैहिस्सलाम को फिर थपकी दी, बात करी उनको, नहीं नहीं डरिए नहीं, उठ जाइए, ठीक है। अब जाहिर है जब इतने बड़े थे तो वहां से जो करीब आए ना, तो एट द सेम टाइम श्रिंक भी होते गए, ठीक है। तो आपसे सर के पास जब पहुंचे ना, तो फिर वो एक आदमी की साइज के हो चुके थे, उस वक्त नॉर्मल साइज के हो चुके हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर उठाया, और फिर जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ और मैसेजेस दिए, ठीक है ना। और मैसेजेस के अंदर वो शुरू की तीन आयतें भी थी, कौन सी? सूरह मुद्दसिर की तीन आयत, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदर وربك فكبر, ठीक है। एक्चुअली तीन नहीं थी, शायद पांच थी, وصيابك فطهر والرجز فهجر, आई थिंक فصيابك فطهر तक थी, चार शायद, ठीक है। तो ये जो सूरह मुद्दसर के शुरू की जो आयत है ना, ये भी नबी अलैहि सलाम को सुनाई और फरमाया कि जी बस आपने अब करना है ये, ठीक है ना, अब आप खड़े हो जाइए और लोगों को अल्लाह ताला से और आखिरत के अजाब से डराना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर इस वक्त भी नबी अलैहि सलाम को, अब ये है कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इतना डर नहीं लगा क्योंकि ये सब कुछ तो हो चुका था, ठीक है ना। लेकिन ये जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतना इम्पोर्टेंट जो टास्क दे दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, अब इसका एक अलग खौफ होता है, एक अलग होता है कि भाई क्या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा काम मुझे दे दिया है, मैं कैसे करूँगा इन सारे बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े अपने चचाओं को और फुप्पुओं को और ये को सबको मैं कैसे डराऊंगा, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा हो गए, फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, फिर अपने घर वापस गए और वहां पर भी जो है ना फिर इसी तरीके से फिर आप सबको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जी उस वक्त नहीं, और तो कोई भी नहीं देख रहा था उस वक्त, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं, किसी को कोई और सवाल पूछना है? आपने क्या लिखा है, द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो मेट जिब्राइल एज व्हेन ही केम टू क्लीन हिज आर्श, और ये भी हो चुका, ठीक। और कोई क्वेश्चन अगर है तो बता दें, वरना फिर क्लास खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।